السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. آج کا یہ خطبہ میں ہمبرگ سے دے رہا ہوں اور یہاں سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، یعنی ٹیلی ویژن انٹرنیشنل احمدیہ ٹیلی ویژن کے ذریعے تمام دنیا میں یہاں سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. چونکہ جس کمپنی سے انہوں نے بات کی تھی اس کی وین میں کچھ خرابی ہو گئی تھی، اس لیے بجائے وقت پر شروع ہونے کے تقریباً پندرہ منٹ بعد میں یہ خطبہ شروع ہو رہا ہے. جماعت احمدیہ جرمنی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ مختلف پہلوؤں سے ترقی کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور دن بدن ان کے کام بڑھتے جا رہے ہیں اور کام کرنے والے ہاتھ بھی اللہ کے فضل سے بڑھ رہے ہیں. یعنی بہت سے ایسے نوجوان یا بڑے چھوٹے جو پہلے باقاعدہ جماعت کے کاموں میں حصہ نہیں لیا کرتے تھے، اب ایک غیر معمولی قوت کے ساتھ جماعت کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، اور کام کرنے والوں کی تعداد دن بدن رات دن بڑھ رہی ہے. لیکن ابھی تربیت کی بہت ضرورت ہے، اور ابھی انفرادی طور پر ہر شخص کے تقویٰ کے معیار بڑھانے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ کام کرنے والے بہرحال خلوص سے آتے ہیں، دنیا کی لذتیں چھوڑ کر، دنیا کی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر جب وہ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، تو یہی ایک بہت بڑی بات ہے جو ان کے تقویٰ یا نہاں تقویٰ کو ظاہر کرتی ہے. تقویٰ بھی نہاں ہوتا ہے اور ظاہر ہوا کرتا ہے. نہاں تقویٰ وہ بیج ہے تقویٰ کا، جس کے نتیجے میں انسان دنیا سے منہ موڑتے ہوئے اللہ کے کاموں کی طرف توجہ شروع کرتا ہے. لیکن اس کے بڑھنے میں، اس کے نشو و نما پانے میں ابھی بہت سے منازل باقی ہیں. بس اس پہلو سے میں نے یہ دعا کی، اور آپ کو بھی اس دعا میں شامل کرنا چاہتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ جماعت جرمنی کے تمام کرندوں کو پہلے سے بڑھ کر تقویٰ عطا فرمائے، اور ان کا تقویٰ ان کے اعمال میں ظاہر و باہر ہو، اور بہت سی ایسی خرابیاں اور کمزوریاں جو انفرادی طور پر جماعتوں میں پائی جاتی ہیں یا اجتماعی طور پر جماعتوں میں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو دور فرما دے. بس کفر عنا سیئاتنا کی دعا ہمیشہ جاری رہنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، हमारी बुराइयों को हमसे दूर फरमाता चला जा और फरमाता रह। कल जो प्रोग्राम हुए उनसे ये भी अंदाज़ा हुआ कि बढ़ते हुए कामों के नतीजे में गैरों का रुझान बड़ी तेज़ी से जमात की तरफ हो रहा है और काम बाज़ दफ़ा इतने फैले हुए दिखाई देते हैं कि मालूम होता है वो संभाले नहीं जा रहा है। मसलन कल जमात को तवक्को थी कि 100-150 अफराद आएंगे, कुछ यानी ज़्यादा से ज़्यादा इनका ये ख्याल था, कुछ फ्रांसीसी बोलने वाले, कुछ तुर्की बोलने वाले और कुछ अरबी बोलने वाले। लेकिन जो खुदा ताला के फजल के साथ जो गैर जमात और गैर मुस्लिम कल शामिल हुए हैं उनकी तादाद 300 से भी ऊपर थी और उनमें मुख्तलिफ ज़ुबानों के बोलने वाले इसरार कर रहे थे कि हमें भी मौका दिया जाए, हमारे सवालात के भी जवाब मिलने चाहिए। नतीजा ये निकला कि तकरीबन 2.25 घंटे की मजलिस के बावजूद सभी प्यासे मालूम हो रहे थे और चाहते थे कि उन्हें कुछ और मौका मिलना चाहिए। बस मैंने सोचा कि दरअसल अब यहाँ के लिए सिर्फ एक ऐसी मजलिस काफ़ी नहीं जिसमें 4-5 ज़ुबानों वाले शामिल हों, बल्कि यहाँ भी और जर्मनी के दूसरे हिस्सों में भी अब ज़ुबानों के एतबार से अलग अलग मजलिसें बनानी पड़ेंगी। जैसा कि हमने पहले भी ये फैसला किया है कि बोस्नियन बोलने वालों की अलग मजलिस लगा करें और अल्बेनियन बोलने वालों की अलग मजलिस लगा करें। तो काम अल्लाह ताला के फजल से फैलते जा रहे हैं और इन कामों के साथ साथ मरकज़ी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं और ये खौफ पैदा होता है कि क्या मैं उन सब ज़िम्मेदारियों को अदा कर सकता हूँ या नहीं। मगर इसके साथ ही अल्लाह ताला ने हमें जो टेलीविज़न इंटरनेशनल अहमदिया मुस्लिम टेलीविज़न अता फरमाया है, इसके ज़रिए बहुत से बोझ हल्के हो जाते हैं। चुनांचे कल ही मैंने यहाँ के ऐसे अहबाब को जो मौजूद थे मगर सवाल न कर सके उनसे दरख्वास्त की और अक्सर के चेहरों पर उसके नतीजे में चमक देखी कि आप अपने तमाम सवालात लिखकर MTA मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया को लंदन भिजवा दें और हम इंशाल्लाह उन सब के जवाबात आपको देंगे और आप ही की ज़ुबानों में उन जवाबात को नशर किया जाएगा। लेकिन अलावा जी मुकामी तौर पर हमें बहुत से जवाब देने वालों की ज़रूरत है और ये मुमकिन नहीं रहा कि हमेशा जर्मनी में जहाँ भी मैं जाऊँ वहीं अलग अलग मजलिसें लगें। आप में से कसरत से ऐसे आदमी अब तैयार होने चाहिए जो ख़ुद मजालिस से सवाल जवाब लगाएं और पूरे इत्मीनान के साथ दुआ करते हुए मुख्तलिफ सवालात का जवाब देना सीखें। इसलिए मैंने कहा कि जवाब देने के दौरान ही उनकी तालिब इल्मी का ज़माना शुरू हो जाता है और बज़ाहिर वो उस्ताद बनकर जवाब दे रहे होते हैं मगर साथ साथ अल्लाह ताला उनको सिखाता चला जाता है। और ये एक मेरा वसी तजर्बा है जिसमें मैं आपको भी शामिल करना चाहता हूँ। ये ख्याल दिल से निकाल दें कि बहुत बड़े इल्म की तैयारी के बाद आपको गैरों के सवालात का मुतमिन इत्मीनान बख्श जवाब देने की तौफीक मिल सकती है। बसा अवकात इंसान एक सवाल से बिल्कुल नावाकिफ और इस बात से बिल्कुल बेबहरा होता है कि सवाल करने वाले को कैसे मुतमईन किया जाए और अचानक अल्लाह ताला अपने फजल से दिल में डालता है और जो खुदा दिल में डालता है वही बात दुरुस्त निकलती है। बस ये सलूक किसी एक शख्स से नहीं है, सारी जमात से है और जमात अहमदिया के वक़ार की खातिर अल्लाह ताला ने ये अपनी रहमत का सिलसिला जारी फरमाया है। चुनाचे बहुत से अहमदी जो कम इल्म रखने के बावजूद वक्त की मजबूरी के पेश नज़र मुख्तलिफ दिलचस्पी रखने वालों के सवालात का जवाब देना चाहते हैं, बसाओकात मुझे लिखते हैं कि इस तरह हम तो बग़ैर तैयारी के थे, कोई इल्म नहीं था मगर अल्लाह ताला ने महज अपने फजल से हमें वो बात सिखा दी जिसके नतीजे में पूछने वालों के दिल मुतमईन हुए। बस जमात जतनी के बढ़ते हुए काम पर घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने ही ये काम संभालने हैं, वही हमेशा संभालता चला आया है, और ये इस फिक्र की जरूरत नहीं कि अब हम क्या करेंगे। कुछ आप में काम करने वाले पहले से बढ़कर आगे आएंगे, जो आगे आ चुके हैं अल्लाह उनकी तरबियत फरमाएगा और उनको पहले से बेहतर इन बढ़ते हुए कामों के तकाजे पूरे करने की तौफीक बख्शेगा। लेकिन ये काम तो अब फैलने ही फैलने हैं और इन्हें बढ़ना है, इस खौफ से कि हम इनको संभाल सकेंगे कि नहीं, आपने अपने कदम नहीं रोकने। और यही मेरी नसीहत दुनिया भर की जमातों को है जो इस वक्त खुदा ताला के फजल के साथ इस तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही हैं कि बाज़ दफ़ा वो मुंतज़मीन जो मुख्तलिफ जमातों के कामों के सरबराह हैं हैरान रह जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे और आइंदा हमारा क्या लाहे अमल होना चाहिए। क्या अपने काम रोक लें ताकि जो लोग हाथ आए हैं उनको संभाल सकें, या उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहें, यह सवाल है जो मुख्तलिफ उमरा और मुरबियों के जहनों में उभर रहा है। लेकिन मैंने उनको जो तरकीब बताई, जो बात सुझाई, वो जहाँ फिल हकीकत पूरी तरह अमल में आई है वहाँ उनके सारे मसले खुदा ताला के फजल से हल हुए, बल्कि बहुत सी नई बातें उनको ऐसी समझ आईं जो पहले जिनकी तरफ पहले ख्याल नहीं गया था। मैंने जमातों को मसलन अफ्रीका की जमातों को जहाँ बहुत तेज़ी से जमात फैल रही है, कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ इस वक्त तक 3 लाख के लगभग अहमदी हो चुके हैं और आइंदा उनकी तवक्को है कि कमोबेश 2 लाख बकिया वक्त में और मिल सकते हैं। तो जहाँ 5-5 लाख की तरबियत की जिम्मेदारी डाली जा रही हो वहाँ आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उन मुंतज़मीन का क्या हाल होगा जिन्होंने उनको संभालना है और फिर आगे और भी कदम बढ़ाना है। और हुस्न इत्तेफाक ये है कि ये साल मुबाहले का साल है और इस मुबाहले के साल में दुश्मन ने ये चैलेंज दिया था और बड़ी बड़ी मसाजिद में दुआएं करवाई गईं, जर्मनी में भी दुआएं करवाई गईं कि ऐ खुदा ये साल अहमदियत की हलाकत का साल साबित हो, सारे मिशन इनके बंद हो जाएं, जो तरक्की हो रही है वो सारी कदम रोक ले और तू ऐसा कर कि इनके कदम वापस होने शुरू हो जाएं और हर जगह से अहमदियत की सफ़ लपेटी जाए। ये दुआएं हैं जो एक जुमे का दिन मनाकर इंग्लिस्तान के अक्सर उलमा ने मिलकर अपनी मसाजिद में मांगी और जर्मनी की मसाजिद में खसूसियत के साथ ये दुआएं मंगवाई गईं। गालिबन जर्मनी इसलिए कि उनको इंग्लिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरा जर्मनी से है और उनको डर है कि यहाँ की जमात इस तेज़ी से फैल रही है कि कुछ अरसे के बाद उनकी कुछ पेश नहीं जाएगी। बहरहाल ये दुआएं वो मांग चुके हैं और मांग रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स अल्लाह ताला हमें भी कुछ दुआओं की तौफीक बख्श रहा है, इसके बरक्स अल्लाह ताला हमें भी दुआओं की तौफीक बख्श रहा है, उनकी कबूलियत के वादे फरमा रहा है और कबूलियत के निशान दिखा रहा है। बस वो तादाद जो गुज़श्ता साल 16 लाख के करीब थी सारे साल में, और अक्सर हिस्सा इसका साल के आखिर पर हुआ करता है आखिरी चंद महीने में, ये आज तक तकरीबन इतनी ही तादाद पहुंच चुकी है। और खुदा ताला के फजल से आइंदा जो उम्मीदें हैं उनसे मालूम होता है कि हरगिज़ बईद नहीं कि अल्लाह ताला गुज़श्ता 16 लाख को इस दफ़ा दुगना कर दे। तो सवाल ये उठता रहा है कि हम इनको कैसे संभालेंगे। जो जवाब मैंने उनको सिखाया और आपको भी सिखाया, कई दफ़ा जमात जर्मनी को हदायत की, अब फिर मैं इसको दोहरा रहा हूँ क्योंकि सब दुनिया में जमातों को इसकी ज़रूरत है, वो ये है कि मैंने उन जमातों से हदायत की कि अब आपने तरबियत के लिए अलग इंतज़ार नहीं करना, 2 किस्म की टीमें बनाएं, एक तबलीगी टीम जो तेज़ी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो और दूसरी तरबियत की टीम जो जो लोग अहमदियत में दाखिल हों उनको संभालने पर मुकर्रर हों। और उनको काम इस तरह करना होगा कि फौरी तौर पर उन इलाकों में जहां जमात फैली है अच्छी सईद फितरत रूहों की तलाश करें और वहां तरबियती क्लासेस लगाएं और उनकी तरबियत की क्लासों में अहमदियत के बुनियादी अकायद भी दाखिल हों और आइंदा तबलीग कैसे करनी है ये भी तरबियत क्लास का हिस्सा हो और नेक दिल नेक फितरत लोग जो आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं या हिम्मत रखते हैं उनको शामिल करें और उनमें आइम्मा मसाजिद को भी दाखिल करें, उनमें नौजवानों को जिनमें जज्बा है उनको भी शामिल करें और उनकी क्लास का इम्तिहान ये होगा कि जब वो क्लास ख़त्म हो तो अपने इलाके में मज़ीद तबलीग के लिए फैल जाएं। और पहले तो जो अहमदी हुए हैं उनको ख़ुद अपनी ज़ुबान में तबलीग करें और समझाएं कि अहमदियत क्या है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अमूमी अहमदियत की सच्चाई किस तरह जलवा दिखाने लगी है। बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जिनको तफसील से इल्म नहीं, यहाँ तक कि इस नए तरबियती निज़ाम के ताबे मुझे ये मालूम करके हैरत हुई कि बहुत से आइम्मा मसाजिद जो अहमदी हुए थे अहमदी होने के बावजूद उनको अहमदियत का पूरा पता नहीं था। एक आम जलवा सा है जो फैल रहा है, जैसे दिन चढ़ जाए तो मुख्तलिफ कोनों कथरों में मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ साए पड़े हैं वहाँ भी रोशनी असर दिखाने लगती है। तो उन इलाकों में अहमदियत का सूरज इस तेज़ी से तुलू कर रहा है कि अब दीवार के पीछे अंधेरे भी अंधेरे नहीं रहे, वहाँ भी रोशनी कुछ न कुछ नफूज कर गई है। बस इस वजह से पूरी तरह अहमदी अकायद अहमदी तर्ज अमल का इल्म ना होने के बावजूद ये लोग अल्लाह ताला के फजल के साथ अहमदियत में दाखिल होने का एक रुझान रखते हैं। तरबियती क्लास जो मैंने बयान की या तरबियती क्लासें जिनका मैंने जिक्र किया है उनमें इनको बताया जाता है कि अहमदियत की हकीकत क्या है, गैरों से क्या नुमाया फ़र्क है, अमल में क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, रोज़मर्रा की इबादत में जो बैन ही आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है कैसे जान डाली जाए, कैसे उसमें रूह पैदा की जाए, किस तरह आप में से हर एक अल्लाह ताला से एक ज़ाती ताल्लुक़ कायम करे और दुआओं के ज़रिए उस ताल्लुक़ को बढ़ाए और महसूस करे कि वो ज़िंदा हो गया है। ये उमूर जब तरबियती क्लास के ज़रिए हमने उन इलाकों में दोनों नए आने वाले अहमदियों को बताने शुरू किए, उनको समझाने शुरू किए तो हैरत अंगेज़ इनकलाब पैदा हुआ है। बहुत से अइम्मा क्लास के बाद बड़े जोश से उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा हमें तो अब पता लगा है कि हमने क्या हासिल किया है और अब हमारा वादा है कि हम कसरत के साथ अपनी कौम में जाकर घर घर दरवाजे खटखटाएंगे, उनको बताएंगे कि अहमदियत कितनी बड़ी नेमत है। और अब जो तेज़ी आई है तबलीग में ये उनकी वजह से भी आई है, सिर्फ पुराने मुबल्लिगीन नहीं हैं जो काम कर रहे हैं, नए आने वालों की जब तरबियत होती है तो उनमें एक नया जोश पैदा हो जाता है, वो अपने अपने इलाके में अपनी अपनी कौमों को अहमदियत का पैगाम बड़ी तेज़ी से पहुँचाते हैं और इस तरह अल्लाह ताला के फजल के साथ ये सिलसिले अब तेज़ से तेज़ तर होते जा रहे हैं। ये वो उमूर हैं जिनकी जमात जर्मनी को भी ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि बहुत सी जगह जमात जर्मनी ऐसा कर भी रही है। कई ऐसे ग्रुप हैं जो ज़ुबानों या कौमी लिहाज से जर्मनी में एक तशक्कुल इख्तियार कर चुके हैं, बहुत से उनमें से इकट्ठे भी हैं। उनमें तबलीग के नतीजे में जितने भी अहमदी होते हैं लाजिम है कि उनकी फौरी रूहानी तरबियत भी साथ साथ की जाए, उनमें से हर एक को महसूस हो कि वो पहले मुर्दा था अब जिंदा हो चुका है, हर एक ये महसूस करे कि उसका खुदा से एक जिंदा ताल्लुक कायम हो गया है। ये वो चीज़ें हैं जो हकीकत में इंसान को नफ्स मुतमईन अता करती हैं। कल की जो मजलिस यहाँ की सवाल जवाब की मजलिस हुई थी उसके बाद एक उर्दू में सवाल जवाब की मजलिस हुई, वहाँ जो सवालात उठाए गए उनमें से एक नफ्स मुतमैना के मुतल्लिक भी था। चुनाचे मैंने आज एक ऐसी आयत का इंतखाब किया जो इत्मीनान कल्ब के मज़मून को रोशनी डालती है, और इस मज़मून का जो मैं मज़मून बयान कर रहा हूँ उससे गहरा ताल्लुक़ है। नफ्स मुतमैन नहीं है जो दर आखिर बिल आखिर फतह पाएगा, नफ्स मुतमैन नहीं है जिसके नतीजे में दुनिया में अहमदियत के ऊपर यकीन गहरा और कामिल होता चला जाएगा और ऐसे लोग पैदा होंगे जिन पे कभी कोई तजलजुल नहीं आ सकता, उनके वापस हटने या पीछे जाने का कोई सवाल बाकी नहीं रहता। नफ्स मुतमैना जिसे नसीब हो जाए उसे सब कुछ नसीब हो गया। बस कल की मजलिस में एक सवाल ये भी था कि बाज़ औक़ात इंसान महसूस करता है कि उसे नफ्स मुतमैना अता हो चुका है, मगर बाज़ दफ़ा कुछ देर के बाद लगता है कि नहीं। तो वो क्या पहचान है कि हम यकीन कर सकें कि हमें नफ्स मुतमैना मिल गया है? इसके अलावा कुछ और सवाल थे, मसलन जो आजकल वज़ाइफ़ वगैरह जारी हैं टोने टोटकों के ज़रिए बस लोग ख्याल करते हैं कि दुनियावी और दीनी मकासद हासिल कर लेंगे, उनके मुतल्लिक भी बाद औरतों की तरफ से सवालात थे। तो अब मैं समझता हूँ, यानी उस वक्त मैं कल ही मैंने सोचा था कि आज के जुमे में मैं इन दोनों उमूर की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा ताकि जमात जर्मनी में जो सवाल उठाए गए हैं वो आज आपकी वसात से बाकी दुनिया के सामने भी रखे जाएं, और जहाँ तक मुझ में तौफीक है मैं उनका जवाब आपको दे सकूं। सबसे पहले नफ्स मुतमैना की बात है। कुरान करीम की वो आयत जो मैंने मुंतखब की है वो फरमाती है, अल्लज़ीन आमनु व तत्मैन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मैन्नुल कुलूब। वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान पाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मैन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह का जिक्र ही है जिससे दिल इत्मीनान पाते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ ये फरमाया गया अल्लज़ीन आमनु व तत्मैन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और फिर ये फरमाया गया कि ज़िक्रिल्लाह ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। तो ये दो बातें अलग अलग क्यों की जा रही हैं? क्योंकि अगर ज़िक्रिल्लाह ही से दिल इत्मीनान पाते हैं तो जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह के ज़िक्र से उनके दिलों को इत्मीनान पाना चाहिए। ये मज़मून है जिसे इत्मीनान क़ल्ब की हकीकत समझने के लिए समझना ज़रूरी है। हर इंसान ये कह सकता है कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं, मगर कितने हैं जो अल्लाह के ज़िक्र से वाक़ियतन दिलों का इत्मीनान हासिल करते हैं? बस इस आयत में जो दो बज़ाहिर अलग अलग बातें की गई हैं वो हैं ही अलग अलग। मुराद ये है कि अगरचे अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान पाना चाहिए, मगर कम है वो जो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों का इत्मीनान पा लेते हैं। बस वो जो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों का इत्मीनान पा लेते हैं वही हैं जिन्हें नफ्स मुतमैना अता होता है। अब ये जो मसला है इसे आम जुबान में जिसे सब लोग समझ सकें कुछ खोल कर बयान करना ज़रूरी है। हर शख्स को दिल का इत्मीनान नसीब होने का एक तजर्बा ज़रूर है। हर शख्स का दिल किसी न किसी चीज़ से इत्मीनान पाता है। अब आपने कोई मकसद अपनी ज़िंदगी का बना रखा है, किसी को दौलत चाहिए, किसी को अच्छा मकान चाहिए, किसी को अच्छी सवारी चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए, या घर से बाहर की लज्जतें दरकार हैं, ये सारी ख्वाहिशात हैं जिनके पूरा होने से दिल इत्मीनान पाता है। और बज़ाहिर ये बात दुरुस्त नहीं लगती कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मैनुल क़ुलूब, खबरदार सिर्फ अल्लाह का जिक्र है जिससे दिल इत्मीनान पाता है। इंसान अपनी रोजमर्रा की सोच में और रोजमर्रा के तजर्बे में ये बात देख रहा है कि जो चीज उसे चाहे, जो चीज वो चाहता है, जिसकी उसको तलब है, जब मिल जाती है तो उसे उसमें इत्मीनान नसीब हो जाता है। फिर खुदा तआला का ये कहना क्या मतलब रखता है कि अल्लाह के जिक्र के सिवा किसी चीज से दिल को तमानियत नसीब नहीं हो सकती। एक ये पहलू है जिसको आप खूब अच्छी तरह गौर करके समझ लें। दुनिया में जितनी भी ख्वाहिशात आपको मिलती हैं या आपको अता होती हैं, यूं ये दुरुस्त नहीं कहना, जितनी भी ख्वाहिशात आप रखते हैं, हर किस्म की ख्वाहिशात, उसमें नेकी बदी हर चीज़ की ख्वाहिश है, उसके पूरा होने पर आपका दिल मुतमईन होता है, ये आपका तजुर्बा है। लेकिन इसके साथ एक और तजुर्बा भी है कि कुछ देर दिल उस पर मुतमईन रहता है, फिर मुतमईन नहीं रहता, फिर मजीद की हवस दिल को बेचैन कर देती है। जो लोग ताजर हैं उनको अगर अपनी तिजारत की जिंदगी के आगाज के साथ मौजूदा कामयाबियों का मुकाबला करने की तौफीक मिले तो वो ये सोचकर हैरान, देखकर हैरान होंगे कि वो जब शुरू शुरू में बेचारे तजारतें करते फिरते थे, यहां से कुछ कपड़ा खरीदा वहां जाके बेचा, तो उस वक्त तमन्नाएं भी छोटी थी, उनका दिल चाहता था किसी तरह इतना मुनाफा होना शुरू हो जाए कि मैं अपने बाल बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकूं। और जब वो नसीब हुआ तो तजारत के और रास्ते उनके सामने खुल गए, और बाल बच्चों को अच्छी जिंदगी देना मकसूद ना रहा, बल्कि अब उस पर दिल को पूरा इत्मीनान बाकी ना रहा। अब ख्वाहिश यह है कि इस तजारत को बढ़ाकर बात चीजों के कारखाने क्यों ना लगा लूं, और जिन्होंने कारखाने लगाए उनके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि इन कारखानों को इंटरनेशनल तजारत यानी तमाम दुनिया में तजारतों के जरिए इतना फ़रोग दूँ कि मैं अपनी इस प्रोडक्शन में जो कारोबार मैं कर रहा हूँ उसमें और ज़्यादा चमकूँ। और जो और ज़्यादा चमकते हैं फिर और ज़्यादा बड़े हाथ डालने लगते हैं, यहाँ तक के बसा औक़ात शैतान दिल में वसवसा डालता है कि तुम्हें सच्चा इत्मीनान उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक लाखों मार्क तुम बैंक से कर्जा लेकर अपनी तिजारत को और ज्यादा बढ़ाना लो। चुनाचे वो नफ्से मुतमईना की तलाश में कि शायद वहां जाकर मेरे दिल को इत्मीनान नसीब हो, लाखों मार्क कर्जा उठा लेता है, और फिर ऐसा धक्का लगता है तिजारत को कि सब कुछ हाथ से निकल जाता है। लेकिन जिसके हाथ से सब कुछ ना भी निकले वो जानता है कि दुनिया का इत्मीनान इत्मीनान की आखिरी मंजिल नहीं, जो चाहे उसको तलब हो, जो दुनिया की तलब है उसमें इत्मीनान को कभी भी आखिरी मंजिल नसीब नहीं हुआ करती, और इंसान उस पर ठहर नहीं जाया करता, बल्कि इत्मीनान की नई नई राहें उसको दिखाई देने लगती हैं, उन राहों पर चलूंगा तो मुझे इत्मीनान नसीब होगा, और सारी जिंदगी इत्मीनान की तलाश में गुजर जाती है। हर मंजिल को वो इत्मीनान समझता है मगर हर मंजिल पर पहुंचकर मालूम होता है कि इत्मीनान की मंजिल उससे आगे थी। बस ये जो ख्याल है आमतुन्नास का कि हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में मादा चीजों के हुसूल पर भी इत्मीनान कल्ब हासिल कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला ने ये क्या फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब। वो अगर इस आयत पर गौर करें, इस आयत के हिस्से पर गौर करें तो उनको मालूम होगा कि उनका इत्मीनान का तसव्वुर झूठा था। दुनिया की पैरवी से दुनिया को हासिल करने के नतीजे में भी इत्मीनान नसीब नहीं होता, मगर बहुत से ऐसे हैं जिनको दुनिया हासिल भी नहीं होती, वो बेचारे पीछे भागते फिरते हैं, जोर लगाते हैं मगर कुछ हाथ नहीं आता। बहुत से ऐसे हैं जो कुछ हाथ में था वो भी गवा बैठते हैं। बहुतों की तिजारतें इस तरह डूबती हैं कि अपने माँ बाप से कमाई हुई जायदादें जो उनसे विरसे में पाई थी वो भी गर्क कर देते हैं, तो इत्मीनान है कहाँ? हासिल में भी इत्मीनान कोई नहीं और ला हासिल में भी कोई इत्मीनान नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, गौर से सुनो इस बात को, समझो कि अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान है और उसी में इत्मीनान है। मगर अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान तब हो सकता है जब अल्लाह का जिक्र अच्छा लगे। अगर अल्लाह का जिक्र अच्छा ना लगे तो उसमें कैसे इत्मीनान मुमकिन है? बस ये एक दूसरी मंजिल है जो एक मुश्किल मंजिल है जिसको तय करना आसान नहीं, यानी अल्लाह से कैसे इतना दिल लगाया जाए कि उसके जिक्र से इत्मीनान नसीब हो। और जब तक ये ना हो इंसान के दिल को इत्मीनान नहीं मिल सकता। फरमाया अल्लज़ीन आमनू व तत्मईन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, कुछ लोग वो भी हैं जो ईमान लाते हैं और उनके दिल अल्लाह के जिक्र से तमानियत पा लेते हैं। उनके जिक्र के बाद ये फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, फिर फरमाते अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब, यकीनन ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और फिर नेकियों में आगे बढ़ने लगे, अमिलुस सालिहात नेकियां करने लगे, तूबा लहुम उनके लिए एक ऐसा बुलंद मकाम है जिस पर रश की नजरें पड़ती हैं। तूबा ऐसे मकाम को कहते हैं जिसे लोग रश से देखते हों। वह हुस्न व मआब और बहुत ही खूबसूरत लौट कर जाने की जगह है। इस सारी आयत को मैं फिर मुख्तसरन आपके सामने रखता हूं ताकि उस सवाल का जवाब मिले कि हमें पता तो लगे कि इत्मीनान कल्ब या वो हालत जिसे नफ्स मुतमईना कहते हैं हमें नसीब भी हुआ है कि नहीं। पहली बात तो इसमें यह है, अगर अल्लाह के जिक्र से वाकई दिल मुतमईन होता है तो लाजमन उसके नतीजे में इंसान का दिल दुनिया से रफ्ता रफ्ता हटता चला जाना चाहिए, क्योंकि जिस चीज में इत्मीनान हो इंसान उसको और चाहता है। बस हर इंसान अपने दिल को जान सकता है, पहचान सकता है कि मुझे नफ्स से मुतमईना नसीब हुआ था या वहम था कि नफ्स से मुतमईना मिल गया है। नफ्स से मुतमईना अगर एक दफा नसीब हो जाए तो फिर कभी छोड़ कर नहीं जाता, और इत्मीनान में यह बात दाखिल है कि वो हालत ठहर जाती है, वो आनी जानी नहीं रहा करती। बस इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया की बातों में इत्मीनान नहीं है क्योंकि उनमें कोई करार नहीं। कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए तब भी करार नहीं क्योंकि उससे अगली की ख्वाहिश पैदा हो जाती है, और कोई ख्वाहिश ना पूरी हो तो तब भी करार नहीं। नफ्से मुतमईना उन लोगों को नसीब होता है जिनको अल्लाह के जिक्र पर करार आ जाता है, और अल्लाह का जिक्र इतना प्यारा लगने लगता है कि गैर के जिक्र से नजरें फिरने लगती हैं और अल्लाह के जिक्र पर आकर नजरें ठहर जाती हैं। और सुबह शाम रात दिन उठते बैठते खुदा तआला के जिक्र, उसके एहसानात, उसके हुस्न एहसान का तसव्वुर इंसान के दिल पर छा जाता है, और ये चीजें ऐसी प्यारी लगती हैं कि फिर दूसरी चीजों की तरफ देखने को भी दिल नहीं चाहता, या देखने को दिल चाहे भी तो वो भी अल्लाह के एहसान के तौर पर, इससे ज्यादा उनमें बरह रास्त दिलचस्पी नहीं रहती। ये वो कैफियत थी नफ्स मुतमईना की आखिरी हालत जो हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुई। चुनाचे आपके ताल्लुक भी अपनी बेटियों से, अपनी बहनों, अपने अजीजों, रिश्तेदारों, यानी बहन जो रिश्ते में बहनें बनती थीं, उन सब से थे, मगर इस वजह से थे कि अल्लाह मेरे इन ताल्लुकात को प्यार से देख रहा है, क्योंकि मैं खुदा की खातिर बनी नौ इंसान के ताल्लुकात का हक अदा कर रहा हूं। इस बिना पर आपको दुनिया के रिश्तों से मुंह मोड़ना नहीं पड़ा, ताल्लुक तोड़ना नहीं पड़ा, बल्कि दुनिया के रिश्ते भी कायम रहे, मगर इसलिए कायम रहे कि अल्लाह चाहता था कि वो कायम रहे। बस आपकी दुनिया भी आपका दीन बन गई, और इत्मीनान कल्ब की इससे बेहतर हालत हो ही नहीं सकती कि दुनिया भी नसीब हो और दीन भी नसीब हो, मगर दुनिया दीन के ताबे हो जाए, और सिर्फ उस वक्त अच्छी लगे जब दीन के ताबे है। जब दीन से जरा भी दुनिया ने किनारा किया, रुख मोड़ा, वहीं वो दुनिया बुरी लगने लग जाए। बस ये अजीब तालीम है जो कुरान ने हमें अता फरमाई है। हरगिज कुरान ये नहीं कहता कि हिंदू साधुओं की तरह दुनिया को तज कर, उससे मुंह मोड़ कर अपनी एक अलग दुनिया बसा लो। कुरान ये फरमाता है कि तुम्हें इत्मीनान कल्ब अल्लाह की याद में नसीब होना चाहिए, और अल्लाह की याद फैलते फैलते खुदा की मखलूक पर भी छा जाती है। जब अल्लाह याद आता है तो अपने एहसान हुस्न एहसान के हवाले से याद आता है। अल्लाह की याद जब प्यारी लगती है तो उसकी तखलीक के हवाले से वो याद प्यारी लगती है। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामं व क़ुऊदं व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़। अल्लाह की याद, अल्लाह को याद रखने वालों के लिए लाजिम है कि अल्लाह की सिफात की जलवागरी को याद रखें। अल्लाह ताला की सिफात जिस तरह बनी नौ इंसान में जाहिर हो रही हैं, हैवानात में जाहिर हो रही हैं, कायनात में जाहिर हो रही हैं, ज़मीन व आसमान की तख्लीक में और कायनात के अज़ल से लेकर अब तक मुसलसल तरक्की करते चले जाने में खुदा ताला की जो सिफात जाहिर हो रही हैं उन पर नज़र डालें। जितनी उसकी नज़र वसी होती चली जाएगी उतना ही अल्लाह के जिक्र से उसका दिल ज़्यादा इत्मीनान पाता चला जाएगा, और उसी तमानियत के नतीजे में अल्लाह के साथ, अल्लाह की यादों के साथ दिल का करार पकड़ना उसकी मखलूक से भी एक मोहब्बत पैदा कर देता है। इस वजह से नहीं कि मखलूक से ज़ाती ताल्लुक़ है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह की मखलूक है। अब ये दो ताल्लुक बज़ाहिर एक दूसरे से जुदा नहीं होते, मगर बहुत बड़ा फ़र्क है इनमें। एक इंसान जब खुदा की मखलूक से ताल्लुक रखता है और बरह रास्त मखलूक से ताल्लुक रखता है तो मखलूक के ताल्लुक में उसे खुदा नहीं याद आता, मगर अल्लाह से यानी खालिक से ताल्लुक रखता है तो मखलूक ज़रूर याद आती है। ये वो बुनियादी फ़र्क है तमानियत कल्ब और तमानियत कल्ब के ना होने का। अब इस बात को फिर दोबारा गौर करके देखें तो आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ आसानी से समझ आ जाएगा। अल्लाह ताला से अगर प्यार है तो नामुमकिन है कि खुदा की सिफात जब अपने जलवे दिखाएं तो उनसे प्यार ना हो, क्योंकि खुदा तो सिफात का नाम है और सिफात की जलवागरी से ही हम अल्लाह को देखते हैं, वरना अल्लाह की ज़ात तो एक मुभम सी अनहोनी सी चीज़ हो जाएगी जिसका सिर्फ नाम जहन में होगा, उससे ज़्यादा हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। अक्सर दुनिया की खराबियाँ इसी वजह से हैं कि अल्लाह का नाम एक दिन में मौजूद है या जहन में एक तसव्वुर सा है, मगर उसकी सिफात की जलवागरी का कोई तसव्वुर नहीं। अब आपके दिमाग में लफ्ज़ फूल आ जाए तो फूल को का तसव्वुर करके आपको खुशबू तो नहीं आएगी। अगर आपके दिमाग में लफ्ज़ फूल आ जाए, फूल का तसव्वुर करके उसके रंग तो नहीं आपको प्यारे लगेंगे, महज़ ख्याल है। तो बहुत से लोग जो बज़ाहिर मजहबी हैं, बज़ाहिर अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वो अल्लाह की सिफात पर इससे ज़्यादा ईमान नहीं रखते जैसा कि एक अनदेखे अनसुने फूल पर आपको ईमान है। होगा कहीं किसी चमन में खिला होगा, किसी सहरा में लाला भी उग जाता है, आपको इससे क्या। मगर वो फूल जो आपके करीब आ जाए, जिसे आपकी आंखें देखने लगें, जिसकी खुशबू को आपका नाक सूंघने लगे, जिसकी लमस उंगलियों को प्यारी लगे, वो फूल और फूल का तसव्वुर देखें कितने मुख्तलिफ हैं। बस अल्लाह की याद दिल को उस वक्त इत्मीनान बख्शती है जबकि इस याद का फूल आपकी गोदी में आ जाता है, आपके हाथों में खेलने लगता है, उसकी खुशबू आपके नाक तक पहुंचती है। और फिर अल्लाह की याद सिर्फ एक गूंगे फूल की तरह तो नहीं, इसमें लहन भी है, इसमें दिलकश आवाजें भी हैं, और सारा इंसान का सारा वजूद अपने पांच हवास खमसा के साथ अल्लाह की याद से बाज़ दफा इस तरह जाग उठता है कि उसे एक नई दुनिया अता हो जाती है। मगर ये याद हमेशा सिफात के हवाले से होगी, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। अगर सिफात के हवाले से हो तो आपको दिन ब दिन प्यारी लगेगी और आपके दिल को करार बख्शेगी। अगर सिफात के हवाले से ना हो तो मखलूक से आपको प्यार होगा मगर जिसने पैदा किया था उससे प्यार नहीं होगा। अब उसी फूल की मिसाल मैं दोबारा आपके सामने रखता हूं। आप फूल को देखें और यह ना सोचें कि किसने पैदा किया था, फूल को देखें और सूंघें और यह ना सोचें कि इसमें खुशबू कैसे पैदा हुई और खुशबू सूंघने की सलाहियत हमें कैसे मिली। बाग में परिंदों की आवाज सुने लेकिन यह ना सोचें ये परिंदे जो कुछ भी बोल रहे हैं इनमें दिलकशी क्यों है, इनमें हुस्न क्यों है, क्यों प्यारी लगती हैं इनकी आवाज़ें सुबह सुबह, और हमारे कानों को किसने ये ताकत बख्शी कि इन आवाज़ों को सुनकर इनका शऊर हासिल करें और उनसे एक लज्जत हासिल करें। अगर ये सब कुछ ना सोचें तो फिर फूल फूल रहेगा, परिंदों की आवाज़ें परिंदों की आवाज़ें रहेंगी, आपको उनमें दिलचस्पी होगी, आप उम्रें गवा देंगे लेकिन खालिक की तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाएगी। और महज दुनिया के हुस्न की खालिक से अलग रख कर पैरवी करना आपको इत्मीनान नहीं बख सकता। ये वो दुनिया की पैरवी है जिससे अंबिया इंसान को डराते चले आ रहे हैं। ऐसी पैरवी दुनिया के ऐसे पीछे पड़ना कि दुनिया अपनी जात में मकसूद रहे, उसका खालिक से ताल्लुक टूट चुका हो, इस दुनिया की पैरवी से इंसान को कभी इत्मीनान नसीब नहीं हो सकता। इत्मीनान नसीब हो सकता है तो अल्लाह ताला की सिफात के हवाले से सफर शुरू करें। यह सफर आखिर आपको दुनिया तक जरूर पहुंचाएगा। कैसे मुमकिन है कि रहमान खुदा का तसव्वुर बांधे और रहम करने वाली मां का तसव्वुर साथ पैदा ना हो? कैसे मुमकिन है कि रब खुदा का तसव्वुर बांधें और दुनिया में आपके लिए जो रबूबियत के समान हुए हैं, आपकी तरबियत के समान, आपके खाने पीने के समान, उनमें तनव्वो हर किस्म की ऐसी बातें जो आपकी आपके हवा से खमसा महसूस करते और मिलजत बातें हैं, ये सारी बातें जो रबूबियत से तल्लुक रखती हैं, अगर आप अल्लाह के हवाले से इनका सोचें तो रबूबियत के सारे मजहर लाजमन आपके सामने रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का यह मतलब नहीं होगा कि आप अल्लाह की सिफत बयान करते हैं वो रब्बुल आलमीन है और आलमीन को भूल जाते हैं और उनकी रबूबियत से अपना ताल्लुक तोड़ लेते हैं। ये जाहिलाना तसव्वुर बाज मजाहिब में पेश किए जाते हैं जिनका खुदा से ताल्लुक टूट चुका है कि हर चीज से अपना ताल्लुक तोड़ लो, ये तुम्हारी निजात का मूजिब होगा, ये इत्मीनान का मूजिब होगा। हरगिज इत्मीनान हर चीज से ताल्लुक तोड़ने से नहीं बल्कि ताल्लुक की वजह दुरुस्त करने से होता है। अगर किसी महबूब के प्यारों से आपको प्यार हो महबूब के हवाले से तो जब तक वो प्यारे उसको प्यारे हैं आपको प्यारे लगेंगे, जब उसको प्यारे ना रहें तो कैसे आपको प्यारे लग सकते। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस मज़मून को उठाते हुए एक मिसाल दी है कि वो शख्स जो किसी से प्यार करता है उसके बच्चों से भी प्यार कर रहा होता है, अगर उसके बच्चे उसको दुख दें तो जो उससे प्यार करता है उसका ताल्लुक उन बच्चों से उसी तरह कटना शुरू हो जाएगा। चुनांचे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो लोग जो खुदा ताला के वली हैं, जो
अल्लाह के साथ जिंदगी बसर करते हैं, जिनको हमेशा की तमानियत अपने रब की जात में नसीब होती है, उनके साथ अल्लाह का भी एक ऐसा ही ताल्लुक बन जाता है, फिर उनकी खातिर अल्लाह ताला उन सब से दुश्मनी करता है जो उनसे उनके दुश्मन हो जाते हैं, उनकी खातिर अल्लाह ताला उन सब से मोहब्बत करता है जो उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। तो अब देखें, ये अल्लाह वाले लोग यही तो वो हैं जिनका दिल खुदा से इत्मीनान पाता है, मगर उनके कहने की बात नहीं रहती, उनकी इलामतें दुनिया में जाहिर होने लगती हैं और खुदा ताला दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ फेरता है। जो उनसे प्यार करते हैं अल्लाह उनसे प्यार करने लगता है, जो उनके दुश्मन हो जाते हैं अल्लाह उनका दुश्मन हो जाता है। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब मुबाहले के चैलेंज दिए तो दरअसल कुर्ब इलाही की निशानी मुबाहला बन जाता है। ये बताना मकसूद था कि अगर तुम मेरे दुश्मन हो और अब मैं दुआ करता हूं कि खुदा जो मेरे दुश्मन हैं तू भी उनको दुश्मन बन के दिखा, तो फिर देखना कि खुदा ताला तुमसे क्या सलूक करता है। मगर बसा औकात खुदा के ताल्लुक वाले नहीं चाहते कि अल्लाह दूसरों पर से नाराजगी का सलूक करे। बस मुबाहले की हालत और इस हालत में एक फर्क है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलसल खुदा को इतने प्यारे थे कि आपको आपसे दुश्मनी करने वाले खुदा की कहर की नजर के नीचे थे, मगर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी नौ इंसान से जो रहमत का ताल्लुक था वो खुदा ही की रहमत के ताल्लुक का एक निशान था। बस आपके हवाले से बनी नौ इंसान पर रहम किया जा रहा था। अल्लाह ताला आपके दिल की रहमत को देखता था जो अपने दुश्मनों से है, और इस रहमत के हवाले से उनसे भी नरमी का सलूक फरमाता था। अब ये वो मजमून है इत्मीनान कल्ब का, जिसको अगर आप समझें तो आपको बहुत खजाने मिल जाएंगे, बहुत बड़ी दौलत हाथ आ जाएगी। अल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों प्यार था? इसलिए कि खुदा ना होते हुए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की सिफात से प्यार किया, और खुदा की जात का प्यार उसकी सिफात के प्यार से अलग नहीं हो सकता। बस ये अजीब सी बात दिखाई देती है कि बज़ाहिर खुदा ताला खुद अपनी ही जात से प्यार कर रहा है, मगर ये प्यार एक शीशे के हवाले से है। कोई इंसान जो बहुत ही खूबसूरत हो उसे आईना का हवाला लेना पड़ता है, आईना का जरिया अख्तियार करना पड़ता है, आईना देखता है तो फिर अपना हुस्न दिखाई देता है। बस खुदा के वो बंदे जिनका दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पा जाता है वो अल्लाह के लिए आईना बन जाते हैं, उनमें खुदा ताला अपने जिक्र को जलवा कर देखता है, और उनमें जलवा कर देखते हुए खुदा ताला को उस हुस्न से एक और किस्म का प्यार पैदा हो जाता है। उसी का हुस्न है मगर किसी ने आरियतन लिया है, अपने ऊपर जारी किया है। बस अगरचे अल्लाह की रहमत सब लोगों की खैर चाहती है, मगर जब उसके बंदे लोगों के दुखों के बावजूद खुदा की रहमत को अपनाते हुए उनकी भलाई चाहते चले जाते हैं तो अल्लाह उनके हवाले से उनको माफ फरमाता है, उस रहमत के हवाले से उनको माफ फरमाता है जो दुनिया में काम कर रही है, उस रहमत को तोड़ने के लिए उसे मजरूह करने के लिए दुनिया हर कोशिश करती है, मगर वो उस पर कायम रहते हैं। ऐसे खुदा के बंदे उसको और भी ज्यादा प्यारे लगने लगते हैं, और ये वो लोग हैं जिनका दिल अल्लाह से ऐसा इत्मीनान पाता है कि खुदा ताला से उनके लिए अलग होने का कोई सवाल ही बाकी नहीं रहता। मगर इसी सूरत में एक मुबाहला भी है, जब दीन की बका की खातिर, जब दुनिया को दिखाने के लिए कि वाकयातन ये खुदा के बंदे हैं, वो खुदा से इल्तजा करते हैं और खुदा के हुक्म पर मुबाहला करते हैं, तो उसके नतीजे में फिर उनकी रहमत दुश्मनों की राह में आड़ नहीं बन सकती, रोक नहीं बन सकती। उस वक्त दुश्मन ये फैसला कर लेता है कि अब हमें इनकी रहमत से नहीं बल्कि इनके अल्लाह से ताल्लुक से मुकाबला करना है। अगर खुदा का इनसे ताल्लुक है तो फिर दिखाए अपना गजब हमारे ऊपर। यह वो वक्त है जब रहमत सिमट जाया करती है और गजब उभरा करता है। बस ऐसे वक्त में अल्लाह ताला के गजब से डरना चाहिए, मगर होता उन्हीं की खातिर है जिनके दिल अल्लाह से इत्मीनान पाते हैं, उनके अलावा नहीं होता। नफ्स मुतमइन्ना होना जरूरी है, और नफ्स मुतमइन्ना की यह भी शान है, जैसा कि हजरत मुस्लिम मौऊद ने एक शेर में फरमाया, हो फजल तेरा यारब या कोई इब्तिला हो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। उस वक्त अल्लाह ताला के ये बंदे खुदा ताला के गजब पर भी राजी हो जाते हैं, उसकी गैरत की तजली पर भी राजी हो जाते हैं। वो अपना हाल एक तरफ रखते हैं और अपना सब कुछ खुदा की झोली में डाल देते हैं, या खुदा फिर जो तू चाहे कर, हम उसी में राजी होंगे। मगर इसके बावजूद उनके अंदर जो खुदा की रहमत का एक जारी चश्मा है वो बंद नहीं हुआ करता। ये कैसी कैफियत है जिसको कोई इंसान बयान नहीं कर सकता, मगर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बारहा मुख्तलिफ रंग में इसे बयान करने की कोशिश भी की। आपसे जब दीन के दुश्मनों ने मुकाबले किए और वो हलाक होने लगे तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बार दफा सारी रात उनके हक में दुआएं करते गुजार दिया करते थे, ऐ खुदा बड़े बदबख्त लोग हैं मगर किसी तरह उनको बचा दे। उनकी हलाकत से हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को खुशी नहीं होती थी, खुदा का निशान पूरा होते देखते आपको खुशी होती थी। बस ये कैफियत होती है नफ्स मुतमइन्ना वालों की कि वो खुदा की खातिर अपना हर सुकून खुदा के साथ वाबस्ता कर लेते हैं, अपने हर बेकरारी को भी खुदा से वाबस्ता कर लेते हैं। बस बावजूद बेकरारी के उनको इत्मीनान रहता है। नफ्स मुतमइन्ना वालों को मुतलिक ये नहीं कहा जा सकता कि वो बेकरार नहीं होते। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि वो गैरों के लिए कितना बेकरार हुआ करते थे। कोई कह सकता है कि आपको नफ्स मुतमइन्ना हासिल नहीं था, मगर नफ्स मुतमइन्ना का मतलब है जब भी किसी वजह से बेकरार होंगे अल्लाह की खातिर होंगे। कोई खुदा से दूर हट रहा है तो अल्लाह की खातिर बेकरार होंगे। बस उनकी बेकरारी में भी एक तमानियत पाई जाती है, वो अल्लाह के हवाले से होती है। ये वो बारीक बातें हैं जिनको आप समझें या इस वक्त समझें या ना समझें, मगर याद रखें कि नफ्स मुतमइन्ना एक ऐसी हालत का नाम है जो अल्लाह ताला की सिफात से मोहब्बत के नतीजे में पैदा होती है। सिफात बारी ताला से मोहब्बत के बगैर नफ्स मुतमइन्ना नसीब नहीं हो सकता। अगर ये मोहब्बत आपको मिल जाए तो फिर वो दिन आपकी निजात का दिन है, आपकी नई तखलीक का दिन है। लाजिम है कि उसके बाद फिर कभी उस पहलू से आपको बेइत्मीनानी नसीब ना हो। बेइत्मीनानी हो तो इस मोहब्बत के हवाले से हो। ये बज़ाहिर मुतज़ाद मज़मून लेकिन फिर हकीकत मुतज़ाद नहीं है। एक शख्स को अगर किसी से प्यार हो और कोई उस प्यारे से दुश्मनी करता हो तो आपको उस प्यार पर तो इत्मीनान है, मगर उसे दुश्मनी करने वाले से के नतीजे उसके दुश्मनी करने वाले से आपको जो दूरी पैदा होगी और तकलीफ पैदा होगी कि जिससे मुझे प्यार है देखो ये उसको बुरा भला कह रहा है। अगर उससे प्यार हो तो ये तकलीफ होना लाजमी है। बस नफ्स मुतमइन्ना के लिए भी कुछ बेकरारियां हुआ करती हैं। ये ख्याल दिल से निकाल दें कि नफ्स मुतमइन्ना को कोई बेकरारी नसीब नहीं होती, मगर नफ्स मुतमइन्ना की तमाम बेकरारियां अल्लाह के हवाले से होती हैं। अल्लाह से प्यार है, जिसको खुदा से प्यार होगा आपको उससे प्यार बढ़ता चला जाएगा, जिसको खुदा से प्यार नहीं होगा उसके लिए आपके दिल में बेकरारी होगी कि जिससे मैंने चैन हासिल किया ये क्यों उससे चैन हासिल नहीं करता, ये क्यों उसको तकलीफ पहुंचाता है जिससे जिससे मुझे प्यार है। बस मुतमैना की बेकरारियां भी अपनी जगह हैं, मगर वो बेकरारियां जो नफ्स मुतमैना से हटकर होती है वो तो जानलेवा साबित होती है, वो तो इंसानी जिंदगी को हमेशा जहन्नम में तब्दील करती चली जाती है। मगर वो बेकरारियां जो नफ्स मुतमैना के नतीजे में हासिल होती है, जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा थी, अगर ये ना होता तो खुदा आपको कभी ये ना कहता लाल्ला का बाखरू नफ्सा का अल्लाह यकून मोमिन। ऐ मेरे महबूब बंदे, इन जैसे लोगों के लिए अपने दिल को हलाक ना कर। किस लिए हलाक दिल हो दिल हलाक हो रहा था? इसलिए कि वो अल्लाह से दूर थे, जिससे आपको प्यार है उससे उनको प्यार नहीं था, और जिससे आपको प्यार है वो इतना प्यारा है कि उसके सवाब किसी और प्यार की कीमत ही कोई नहीं रहती। ये वो कैफियत थी जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल की कैफियत थी, यानी आपकी बेकरारियां अल्लाह के हवाले से थी, अल्लाह के प्यार और उसकी मोहब्बत के हवाले से थी। और इन बेकरारियों पर सबसे ज्यादा किसकी नजर थी? अल्लाह ही की नजर थी, जो आसमान से हर लम्हा आपके दिल पर नजर डालते हुए फरमाता था लाल्ला का बाखरू नफ्सा का। ऐ मेरे प्यारे, क्या तू अपने दिल को इन जैसे लोगों के लिए हलाक कर देगा कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह से दूर है? बस ये नफ्स मुतमैन है जिसका सारा सुकून अल्लाह की याद और उसके प्यार उसकी मोहब्बत में हो, जिसकी सारी बेकरारियां अल्लाह की याद और उसके प्यार उसकी मोहब्बत की बिना पर हों। अगर आप अपने नफ्स में ये बात देखते हैं तो फिर आपको नफ्स मुतमैना नसीब है। और इसकी आखिरी यकीन दहानी खुदा ताला उस वक्त करता है, करवाता है, जब ऐसा इंसान जान अफरीन के सुपुर्द अपनी जान करता है। और हर शख्स को मरने से पहले खुदा ताला ये यकीन दिला देता है कि ऐ मेरे बंदे, तुझे नफ्स मुतमैना नसीब था। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे वक्त में जब वो जान दे रहा हो, उसको आसमान से आवाजें आती हैं, या ये तो नफ्स मुतमैना तुरजे इला रब्बे के रादियत अमर दिया फतखुली फे आबादी वतखुली जन्नती। क्या मेरे बंदे, मैं जानता हूं कि तुझे नफ्स मुतमैना नसीब है। और नफ्स मुतमैना की आखिरी हालत यह है कि अपने महबूब की तरफ कामिल तौर पर लौट आए। बस अब तेरी मौत तेरे लिए मुसीबत का मुजीब नहीं है, तेरी मौत तेरे लिए खुशखबरी लाई है। आज मैं तुझे ये कह रहा हूं कि तू तो हमेशा मुझसे ही इत्मीनान पाया करता था। बस ऐ मुझसे इत्मीनान पाने वाले, ऐ मेरी रजा से राजी, सुन के मैं भी तेरी रजा पर राजी हो गया हूं। आ और मेरे बंदों में उस जन्नत में दाखिल हो जा जो मेरे बंदों की जन्नत है। बस नफ्स मुतमैना कोई वहमा नहीं है जिसके मुतल्लिक आप समझें कि पता नहीं नसीब हुआ है कि नहीं। एक चीज ऐसी जिसको आप हमेशा देख सकते हैं, वो इन बारीक बातों से अलावा हटकर रोजमर्रा के तजर्बे में है, वो ये है कि जब किसी नेकी को आप ऐसा अपना लें कि वो आपकी जात का हिस्सा बन जाए, नामुमकिन हो कि उसको इख्तियार करके आप उखाड़ कर फिर फेंक सकें, उखेड़ फेंकें उसको, ये अगर मुमकिन ना रहे तो ये नफ्से मुतमैन। बस नफ्स मुतमैना की तलाश में बेशक ये ना समझें कि आपको नफ्स मुतमैना की तमाम हालतें यकदम नसीब होंगी, लेकिन ये देखना लाजिम है कि किसी न किसी नेकी पर आपको इतना इत्मीनान हो जाए कि फिर वो नेकी आपके हाथ से ना छूट सके। उस हिस्से में आप यकीन कर लें कि आपको नफ्स मुतमैना नसीब हो गया है। आज जमात अहमदिया को जरूरत है कसरत के साथ नफ्स मुतमैना पैदा करने वालों की, क्योंकि इनको जमात अहमदिया को इसके बड़े छोटों बच्चों तक को भी अगर नेकियों पर नफ्स मुतमैना नसीब होना शुरू हो जाए तो लाजिम है कि यह जमात दुनिया पर गालिब आकर रहेगी, क्योंकि बिल आखिर नफ्स मुतमैना गैर मुतमैना नफ्स पर जरूर कुदरत रखता है और उस पर गलबा पाया करता है। اب چونکہ زیادہ مزید وقت نہیں ہے دوسری بات کا، وہ پھر انشاءاللہ میں آپ سے کر لوں گا، لیکن کل کی مجلس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں جو ٹونے ٹوٹکے وغیرہ اور وظیفے پڑھ پڑھ کے اپنے مقاصد حاصل کرنا، اس قسم کے توہمات بھی پائے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ کسی وقت ان چیزوں کو بھی میں جواب دوں گا. سر دست چونکہ وقت ہو چکا ہے، سوا دو ہو رہے ہیں، سوا تین ہو رہے ہیں، اس لیے اب میں اس خطبے کو یہاں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں فی الحقیقت نفس مطمئنہ عطا کرنا شروع کر دے. کسی کو ایک چھوٹی سی جگہ اپنے دل کے ایک چھوٹے سے دائرے میں نفس مطمئنہ نصیب ہوگا، اور جب ہوگا تو پھر اسے سمجھ آئے گی کہ نفس مطمئنہ کیا چیز ہے. یہ آ جائے تو پھر ہلا تلا نہیں کرتا، آ جائے تو پھر چھوٹ نہیں سکتا آپ سے. بس جب نیکی سے اتنا پیار کرنا سیکھ لیں گے آپ کہ نیکی آپ کی جان بن جائے، اس وقت آپ کو نفس مطمئنہ نصیب ہوگا. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.